का था, रूह वही रूह नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं जुनैद की लिखी कहानी थैंक्स कान्हा। ओ कान्हा मेरे कान्हा, मुरली मनोहर सबसे सुंदर, तेरे नयन तिस रूप धरोहर, पुष्प सी देह है निर्मल निर्मल। तकिए के नीचे से मोबाइल फोन निकाला, सुबह के 4:30 बज रहे थे। गुस्से से आग बबूला होकर मैंने सीधे सुलेमान को फोन लगाया। हेलो सुलेमान, अबे ये क्या है बे? गुड मॉर्निंग दरोगा जी, क्या हुआ? साले क्या हुआ? अबे डंडा डाल दूंगा तेरी सल्तनत में। अबे ये क्या भजन वजन? तू तो बोलता था ना यहाँ कोई मंदिर है ना मस्जिद, ना कोई धार्मिकता ना कोई प्रॉब्लम, लेकिन ये सुबह 4:30 भजन, वो भी ठीक बगल वाले कमरे से। दरोगा जी बहुत मीठा भजन गाती है पायल बिटिया, कसम खुदा की जो एक बार सुन ले आंखें मूंद लेता है। हाँ लेकिन बस सुबह शाम ही गाती है, बाकी बड़ी समझदार पढ़ी लिखी फैमिली है, सिर्फ 1 महीना मैनेज कर लीजिए, अगले महीने वैसे भी पुलिस लाइन में आपको तो कमरा मिलने ही वाला है। फोन गुस्से से काटा, कमबख्त सुलेमान झूठ बोल गया, एडवांस भी ले लिया, साले के डंडा चढ़ा दूंगा। नींद हराम हो गई। वैसे ही थाने में हो हल्ला और थाने से लौटते लौटते 12-1 बज जाते हैं, उसके बाद बड़ी मुश्किल से नींद आती है और उस पर से ये भजन। अभी नई पोस्टिंग हुई है यहाँ, मेरी जगह जो थानेदार था उसने सुलेमान को अच्छी तरह बता दिया था कि मेरा मिजाज कैसा है। आई लाइक पीस, नफरत है मुझे शोर और इस धार्मिक मजहबी सूतियापे से, नास्तिक हूं मैं, मेरा मन करे तो इन सब पर बैन लगा दूं। किसी को कोई हक नहीं है किसी की व्यक्तिगत आजादी को बाधित करने का। जहां पहले पोस्टेड था वहां अजान नहीं सोने देती थी, अब यहां पे भजन लेकर शुरू हो गई। कुछ देर बस करवट बदलता रहा, फिर सोचा अब जब ये रोज का ही ड्रामा है तो क्यों ना मॉर्निंग रनिंग ही शुरू कर दूं। उठा, फ्रेश हुआ और ट्रैक सूट पहना, स्पोर्ट शूज पैरों पे डाले और जैसे ही जॉगिंग को निकला, बगल वाले कमरे का दरवाजा खुला और एक बहुत ही सुंदर सी लड़की सर पर दुपट्टा चढ़ाकर पूजा की थाली लेकर बाहर निकली। उसको पता नहीं था कि मैं पीछे खड़ा हूं। वो तुलसी को जल चढ़ाने लगी और ना जाने क्या क्या ड्रामा कर रही थी। जब ज्यादा ही हो गया तो मैंने खराश की और वह चौंक गई, पीछे मुड़कर देखा तो मुझे खड़ा पाया। हो गया, रास्ता देंगी अब? जी क्षमा कीजिएगा, आपको देखा नहीं, अन्यथा आपको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। ये लीजिए प्रसाद। रहने दो, बस रास्ते से हट जाओ। मैंने एक पल उस लड़की की आंख में देखा और देखता ही रह गया। इतनी शांति, इतनी पावनता, तुरंत उसकी आंखों से अपनी आंखें हटाई। दौड़ता रहा लेकिन वो आंखें नजरों से ओझल ही नहीं हो रही थी। थाने में भी दिन भर वो आंखें मुझे देखती रहीं। तभी सुलेमान आया। दरोगा जी सलाम, मैंने एक कमरा और देखा है आपके लिए, ईमान से टोटल नास्तिकों की कॉलोनी है। गाड़ी और संतरी भिजवा दें तो आपका सामान अभी शिफ्ट करा दें। नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं, वैसे भी 1 महीने की ही तो बात है, मैं मैनेज कर लूंगा। वैसे कौन कौन रहता है बगल में? दरोगा जी बड़ी ही जेंटल फैमिली है, ईमान से कोई व्यसन कोई झगड़ा फसाद कोई बदनामी नहीं, सिर्फ अपने से मतलब। मैंने ही कमरा दिलवाया था, तब से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे। अबे मैंने पूछा रहता कौन कौन है? साहब अवस्थी जी, उनकी मिसेस और उनकी बिटिया पायल। बेचारे अवस्थी जी बीमार रहते हैं, पहले जन्म पत्री और कुंडली वंडली शादी ब्याह का काम देखते थे, अब घर पायल बिटिया चलाती है, सुबह शाम ट्यूशन और दिन भर मॉडर्न स्कूल में मास्टरी। लेकिन आप फिर भी कहें तो कमरा अभी बदलवा देते हैं आपका। कहाना हो गया, अब तुम जाओ, कोई जरूरत होगी तो फोन कर लूंगा। क्या हो गया था ये फिर क्या हो रहा था मुझे? आखिर वही माहौल तो पसंद है मुझे जो सुलेमान ऑफर कर रहा था? यही तो चाहता हूं मैं, या फिर बात कुछ और थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी फोन बजा। फोन कप्तान साहब मतलब एसपी साहब का था। जय हिंद सर। देखो अजय, तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ पे सिर्फ इसलिए किया गया है कि शहर में सेक्स रैकेट अपनी जड़ें जमा चुका है और इसमें बड़े बड़े नामचीन लोग इन्वॉल्व हैं। तुम्हें पूरे तथ्य जुटाने हैं और इस पूरे शहर को जिस्म फरोशी के इस कलंक से, इस आतंक से निजात दिलवानी है। ओके? यस सर। जय हिंद। फोन डिस्कनेक्ट हुआ और मैंने सिपाहियों और हवलदारों के संग एक मीटिंग की और अपने खबरियों को मुस्तैद करने को कहा ताकि सेक्स रैकेट से जुड़े छोटे से छोटे सुराग और सबूत पर वो अपनी पकड़ बना सके। 11 बजे अपने कमरे में पहुंचा। खाना खाकर मैं बाहर से ही आ गया था तो जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, सर सुबह के लिए सॉरी, मम्मी बोल रही है कि खाना खा लीजिए। ना, थैंक्स, वो खाना मैं खाकर आया हूँ और सुबह के बिहेव के लिए आई एम सॉरी पायल। आपको मेरा नाम किसने बताया सर? सुलेमान ने। ओहो, सुलेमान चाचा ने। ओके सर, शुभ रात्रि। वो आपके पापा की तबीयत कैसी है? अब सुलेमान ने बताया था कि खराब रहती है। वो बोलती रही और मैं उसके गुलाब की पंखुड़ी से होंठ देखता रहा, उसकी आंखें, उसका चेहरा। लेकिन तभी उन निश्चल आंखों से आंसू के कतरे गिरने लगे। ये क्या कर रही हो पायल? सब ठीक हो जाएगा, प्लीज रो मत, प्लीज। अपने दुपट्टे से उस पवित्र और पुण्य आत्मा ने अपने आंसू पोछे और वह जलवा आंखों के आगे से छट गया। मैं सीधा अपने कमरे में पहुंचा, जूते मोजे और वर्दी खोलकर ट्रैक सूट पहना और बिस्तर में जा गिरा। नींद आंखों से फरार थी। वह चेहरा जो अभी सामने जलवा नुमा था, वो लाख कोशिश के बाद भी आंखों के सामने से हटता ही नहीं था। न जाने मन कैसे कैसे ख्वाब बुनने लगा और आंख लग गई। ओ कान्हा मेरे कान्हा, तपाक से नींद टूटी और छटपटा के उठा। लेकिन आज रत्ती भर गुस्सा नहीं था, बल्कि आज उस आवाज को पीने की प्यास थी। उफ, क्या मीठी और सुरीली आवाज थी। जब वो आवाज का मीठा झरना गिरना बंद हो गया, एकदम से मुझे होश आया। मैंने ट्रैक सूट पहना और जॉगिंग के लिए बाहर निकला। जैसे ही आगे बढ़ा, एक डरती कांपती आवाज मेरे कानों से टकराई। सर प्रसाद। मैं पलटा और अपने हाथ आगे कर दिए। माँ बाबा की असमय मौत के बाद मेरा विश्वास ईश्वर पर से उठ गया था। आज पूरे 35 साल का हो गया हूं, लेकिन 35 सांस नहीं ली जिसमें कभी किसी को देखकर दिल धड़का हो। लेकिन आज दिल के बुझे शोले भड़कने लगे, सारे मुरझाए फूल अंगड़ाई लेकर खिलने लगे। मेरे प्रसाद ग्रहण करने से पायल के चेहरे पर जो चमक और खुशी थी, उसने मेरा पूरा दिन बना दिया। पूरे दिन मैं बहुत खुश था, इतना कि मैंने ना आज किसी पर गुस्सा किया और ना ही किसी पर झुंझलाया। बस वो चेहरा उतने ही बार मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता जितनी मैं सांसें लेता, जितना यह दिल धड़कता। घड़ी के कांटे देखता कि कब वो 11 से मिले और कब मैं कमरे में जाने के लिए कदम बाहर निकालूं। इस सिलसिले को एक महीना गुजर गया। मुझे पुलिस लाइन में कमरा भी अलॉट हो गया, लेकिन मैंने रूम शिफ्ट नहीं किया। क्योंकि अरे कोई क्योंकि नहीं, बल्कि यकीनन मैं पायल से प्यार करने लगा था, सच्चा और निर्मल प्यार। एक दिन बाजार में अतिक्रमण हटाने में ड्यूटी थी, तभी पायल को स्कूल से आते देखा। उफ, छिप गया अपनी पुलिस वैन के पीछे। देखता रहा, उस मासूम ने एक बार भी नजर किसी पर ना डाली। हवा का जखीरा समेटे उसकी वो दो आंखें सिर्फ जमीन देखकर चलती रहीं। तभी, क्या मस्त फिगर है, आए हाय क्या जवानी है। अपने ऊपर गिरते इस बेहुदा फिक्रे को पायल ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मेरे हाथ मेरी बेल्ट को खोल चुके थे। मैं सीधे दौड़ा और उस आवारा पैसे वाले की बिगड़ैल संतान का तानपुरा बजा दिया। पायल मुझे देखती रही और मेरे गुस्से ने मुझे अंधा कर दिया। प्लीज सर छोड़ दीजिए, ये तो रोज झेलना पड़ता है हर एक लड़की को। पायल की इस सच्ची गुहार और पीड़ा ने मुझे झकझोर दिया और मैं वहीं चिल्लाकर बोला, मैं अजयनाथ शास्त्री, थानेदार शोभना नगर, ये अल्टीमेटम देता हूँ उन सब आवारा बदमाशों और बिगड़ैलों को, किसी ने भी अब इस शहर में किसी भी लड़की की तरफ या तो आंख उठाकर देखी या फिर उसको छेड़ा या फिक्रे कसे, ऐसा मैंने देख भी लिया ना तो उसकी जुबान उसके गले में लपेट दूंगा। हर तरफ से तालियां गूंजी। हर लड़की, हर औरत और हर उम्र की मादाएं जो भी वहां पे जमा थीं, उन्होंने अजय शास्त्री जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन मेरी नजर सिर्फ उस चेहरे को ढूंढ रही थी जिससे मुझे प्यार हो गया था। तभी वो चेहरा नजर आया और नजर आई उस चेहरे के होठों पर एक मुस्कान जो सिर्फ मेरे लिए थी, जो सूचना दे रही थी कि आग दोनों जानिब अब बराबर भड़कने लगी। मैं इश्क में गुम था और जिंदगी हसीन, सिर्फ हसीन होती जा रही थी। तभी एक पिनक लगी, मैं अपनी कुर्सी से खड़े होकर तैयार हो गया कि आज पायल के माता पिता से जाकर उसका हाथ मांग लूं। थाने से बाहर कदम निकाला, कुछ फूल कुछ मिठाइयां खरीदी और जैसे ही पायल के घर की तरफ बढ़ा तभी फोन बजा। जय हिंद सर, अजय कहाँ हो तुम? फौरन होटल गैलेक्सी पहुंचो, वहां पे सेक्स रैकेट चल रहा है, मूव फास्ट। मैं सीधे थाने पहुंचा, फूल मिठाइयां अपनी टेबल पे रखी और सीधे पुलिस वैन में मैं पुलिस टुकड़ी के साथ होटल गैलेक्सी की राह ली। होटल गैलेक्सी पहुंचकर कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ना आप कोई अंदर आएगा ना बाहर जाएगा। हवलदार, होटल का मेन डोर बंद कर दो। और फिर डेट शुरू हो गई। हर कमरे की तलाशी ली गई, लगभग हर कमरे में जिस्म फरोशी का कारोबार चल रहा था। तभी मैंने कमरा नंबर 303 का लॉक खोला और देखा कि एक लड़की अपने कपड़े उतार रही थी जिसकी पीठ मेरी तरफ थी। एक मोटा अधेड़ आदमी बिस्तर में बैठकर शराब पी रहा था। ए, हिलना मत साले। तभी मेरी आवाज़ सुन वो लड़की पलटी और मैं जमीन में कोसो सामने पायल खड़ी थी। वो मुझे देखकर घबरा गई और कपड़े पहनने लगी। मैंने आंखें फेर ली, मैं जिंदा खुद में गलने लगा, खुद से ही घिन होने लगी। बहरहाल खड़ा हुआ और एक करारा तमाचा पायल के मुंह पर मारा और फिर सारा गुस्सा उस आदमी के ऊपर निकला। हवलदार, अरेस्ट करो साले को। साहब, इस लौंडिया का क्या करना है? तुम इसे रहने दो, इसे मैं लेकर आता हूँ। कुछ देर कमरे में सन्नाटा रहा, फिर मैं बोला, साली कॉल गर्ल, समाज की नज़रों में धार्मिक और भोली बनी रहती है, स्कूल के बच्चों की नज़र में उनकी आदर्श टीचर, और यहाँ जिस्म बेचकर अपने शौक पूरे कर रही है। साली रंडी, शर्म आती है मुझे आज खुद पर कि मैंने तुझसे प्यार किया। चली जा यहां से, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा, चली जा। लेकिन पायल खड़ी रही और मैं उसी बिस्तर में बैठकर फूट फूट कर रोता रहा। सर, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं क्या करती, पापा को ब्लड कैंसर है, अगर 3 दिन के अंदर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो पापा मर जाएंगे। सर, अपनी खुशी से नहीं, अपनी मजबूरी से मैं यहां पर हूं, मैं क्या करती। ये सेठ मुझे 1 रात के 1 लाख रुपए दे रहा था, कुछ मेहनत करके मैंने जोड़े हैं। पापा का ऑपरेशन हो जाएगा सर, वो मरेंगे नहीं। सर, मेहनत करके इतना पैसा अगर मिल जाता तो मैं यहाँ पे नहीं होती। सर, बैंक का कर्जा वैसे ही सर पर है, कोई उधार देने को तैयार नहीं, तभी मैंने ये कदम उठाया। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए सर। न जाने क्या हुआ, मैं सीधे उठा और जाकर पायल को अपने गले से लगा लिया। हम दोनों आंसू बहाते रहे और फिर मैं बोला, पायल एक बार मुझसे ही कह देती। सर, मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, मुझे लगा आप सोचेंगे कि मेरा आपसे प्यार करना, आपको देखना, महसूस करना, कहीं सब आपको मेरा लालच ना लगे, इसलिए ये गंदा काम करने को राजी हो गई। लेकिन अब हम दोनों राजी थे। मैं इलाज के बाद भी उसके पापा को नहीं बचा सका, लेकिन पायल से शादी करके उसको इतना प्यार दिया कि कभी उसको अपने पापा की कमी नहीं खलने दी। आज हम खुश हैं, पायल, मैं, हमारी 3 साल की बेटी ज्योति और पायल की मम्मी। लेकिन अब हर सुबह पायल अकेले भजन नहीं गाती, बल्कि अपनी मोटी और भद्री आवाज से मैं भी उसका साथ देकर कान्हा को अक्सर कहता हूं, थैंक्स कान्हा, जो तुमने मुझे पायल जैसा हम सफर दिया। गाथा में अभी आप सुन रहे थे जुनैद की लिखी कहानी थैंक्स कान्हा। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया अमित तिवारी ने।